एक्सप्रेस हिंदी पर आज बात करते हैं रंगीले राजस्थान की। आपको पता ही होगा कि राजस्थान की भूमि हमेशा अपने जुझारूपन के लिए जानी जाती है, मानी जाती है। तो राजस्थान के शिकत जिले में एक शख्स है जिनका नाम है गणपत कृष्णा यादव, और ये इंजीनियर है पेशे से, लेकिन जो भिखारी लोग होते हैं उनको अच्छी और बेहतरीन जिंदगी मिले उसके लिए वो उन्हें खेतीबाड़ी क्षेत्र में लगाने के प्रयत्न में है, उनको किसान बनाने के प्रयत्न में है। चलिए जानते हैं ये क्या है पहल, क्या है ये पूरा कार्यक्रम। गणपत जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
जी नमस्ते।
गणपत जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं, आपने पढ़ाई की है, आप बहुत होशियार विद्यार्थी रहे हैं, तो फिर अचानक से ये नया कार्यक्रम शुरू करने का विचार कहाँ से आया?
ये विचार तो मेरा बचपन से ही था। एक्चुअली मैं जिस परिवार में पला बड़ा हूँ वो एक्चुअली किसान परिवार ही था और बहुत गरीब परिवार से हूँ, तो मैंने हमेशा जो गरीबी है, जो लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं आते जाते सिग्नल पे देखा है, तो उस टाइम पे ये विचार था कि इन लोगों को अगर कुछ काम दिया जाए या इनकी मेंटेलिटी को चेंज किया जाए, इनको बचपन से अगर पढ़ाई लिखा दिया जाए तो कम से कम इनके बच्चे तो भी सही नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इनके माँ बाप को मैं कोई काम दूँ इस टाइप का और बच्चों को साथ में रख के उनको पढ़ा सकूँ, तो वो कुछ कर लेंगे, वो आगे भीख नहीं मांगेंगे। ये इसलिए सोच के मैंने, जैसे मेरी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई तो 2 साल तो मेरे को जॉब करनी पड़ी क्योंकि मेरे फाइनेंशियल जो लोन थे, एजुकेशन लोन, उनको चुकाना था। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए मुझे जॉब मिल गई थी और 2 साल जॉब करके फिर मैंने वहाँ से रिजाइन करके फिर इसको मैंने स्टार्ट करने की सोची।
गणपत जी, आपका जो ये पूरा कार्यक्रम है वो आपकी एक किताब है राज तिलक, उस पर आधारित है, उसके बारे में बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
जी, ये राज तिलक के जो किताब मैंने लिखी है, ये हमारे यहाँ के जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, उसके बारे में ही है पूरी, कि जो आर्थिक क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को। तो एक इंजीनियर होने के नाते मैंने ये सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, तो मैंने और मेरी टीम ने, कॉलेज में मेरी टीम थी, तो हमने एक गैजेट ऐसा डिजाइन करने की सोची। वो गैजेट वाली कहानी, साथ में लोग गरीब ना हो या इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, उनके लिए एक आइडिया दिया कि किसान हमेशा से किसान ही रहा है, उसकी मतलब जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा है, तो उसको किस तरीके से आगे अपने काम करना है, खेतीबाड़ी को नया रूप कैसे देना है, उसको एक स्टेप टू स्टेप मैंने उस बुक में लिखा पहले, फिर उसको हकीकत में कैसे करना है उसकी शुरुआत फिर मैंने की। वो तो था एक किताबी जो मैंने लिख दिया, उसको हकीकत में करने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट में फिर लग गया।
गणपत जी, जैसे आपने कहा कि आपने पहले किताब में पूरी प्लानिंग की और अब आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस पूरी पहल में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे?
जी मैम, चुनौतियां तो बहुत सारी आई हैं। इससे पहले तो परिवार का सामना करना पड़ा, पेरेंट्स मेरे खिलाफ हो गए कि इतनी मुश्किल से तो हमने आपको पढ़ाया और आपने भी जॉब को रिजाइन कर दिया, अभी तो बहुत सारे कर्जे भी बाकी हैं। फिर घर से निकल के सड़क तक आया और सड़क पे वो जब उनकी भिखारी से मुलाकात हुई तो वहाँ भी बहुत दिक्कतें आई, वो आना नहीं चाह रहे थे। एक एक भिखारी को समझाने में 15-15 दिन का समय लग गया, बार बार जाना, उनके बच्चों के बारे में बताना, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बताना। तो यहाँ तक हुआ कि कुछ लोगों ने तो मेरे ऊपर पत्थर फेंके कि आप तो खुद भिखारी हैं, देखो आप चप्पलें कैसी पहन रखी हैं। मतलब मैं बिल्कुल उनके जैसा ही हो गया था, वैसे ही कपड़े, वैसे ही हालात, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो करना ही है, जब इतना ही हो गया तो अब तो इनको एक शुरुआत तो करनी है कि बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैंने पहले 2 आए 3 आए 4 आए, फिर ऐसे ऐसे आके लगभग 100 की संख्या में मैंने अपने फार्म पे ले आया। मेरा फार्म जो मैंने लीज पे लिया था, उस फार्म पे जहाँ पे पानी भी खूब था, और वहाँ पे उनको लाया, रखा, उनके जगह बनाई। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जो मेरे पास हेल्प आई थी, जब वो पैसे भी खत्म हो गए तब वो लगा कि अब आप हमें पैसे दीजिए, इससे ज्यादा तो हम भीख मांग के कमा लेते हैं। उनको बहुत समझाया कि आप एक परिवार हैं, आपको खाना दिया जा रहा है, अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं आप, दूध पी रहे हैं यहाँ पे, अच्छे स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं। लेकिन फिर भी उनकी सोच ये थी कि नहीं, हमें तो रोज के 500 रुपये तो चाहिए ही। फिर भी मैंने ये सोच कर कि चलिए इनके बच्चे सुधर रहे हैं, इनको 500 रुपये दो रोज के, मैं कुछ नहीं लेता था, मेरे घर वाले फ्री में काम करते थे, मेरे रिश्तेदार फ्री में काम करते थे, लेकिन उनको मैंने पैसे दिए। और अभी हालात ये हैं कि धीरे धीरे मुझसे कहीं जा भी रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो बिका नहीं है अभी तक सर्टिफिकेशन की वजह से, रूल है गवर्नमेंट का कि 3 साल बाद ही आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उससे पहले चाहे आपकी जमीन कितनी प्योर थी पहले, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो कंपनी मेरा माल खरीद नहीं रही और पैसों की तंगाई आ गई, जिसकी वजह से कुछ लोग जा भी रहे, मैं समझा भी रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है।
अगर गणपत जी आपको किसी प्रकार की मदद मिले तो आप विषय की क्या योजनाएं हैं?
मैडम अगर मेरे को मदद मिलती है तो मैं उस एक जगह से स्टार्ट करके मैं 2025 तक पूरे जयपुर को बेगर फ्री बना सकता हूँ। पूरे इंडिया की तो नहीं कह सकता, लेकिन जयपुर में एक भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं, कहीं से भी नहीं। सच में तो वो होगी स्वच्छता, भारत में स्वच्छता वो होगी। और अगर फिर भी सरकार नहीं कर पा रही, मैंने तो पीएम तक को लेटर लिखा है, हमारे सीएम से भी मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप लिया नहीं है। बाहर से कहीं से कोई किसी एनजीओ से भी मदद मिलती है तो मैं इस लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ कि चलिए कम से कम एक शहर को तो मैं भिखारी मुक्त कर सकता हूँ और उनको सबको किसान बना सकता हूँ और उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करेंगे।
जी गणपत जी, बहुत ही उम्दा विचार हैं आपके और
जी
हम आशा करते हैं कि आपको जरूरी मदद मिले और आपका सपना साकार हो। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी मैम, धन्यवाद, थैंक यू।